क्वेश्चन है सोचा दूसरी गोपियों ने कि आज हमारे साथ में ही कृष्ण नृत्य कर रहे हैं और दूसरी के साथ में नहीं। एक एक गोपियों ने देखा कृष्ण उनके ही साथ में नृत्य कर रहे हैं, ये नहीं देखा कि ये और दूसरी के साथ में रास कर, इसलिए उनको सौभाग्य मत हुआ, सौभाग्य का मत, ये कृष्ण सबको छोड़कर के हमारे साथ में नृत्य कर रहे हैं। इतना अधिक मत हुआ कि उन्होंने सोचा कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए उनको सौभाग्य मत हुआ। जब मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं तो फिर सबके साथ में रास कैसे होगा, कृष्ण ने विचार किया। और राधिका जी ने देखा ये बड़ी क्षिप्र गति से चलता है, नृत्य करता है, ये हमारे साथ में नृत्य कर रहा है, दूसरी गोपियों के साथ भी नृत्य करता, सब और मैं एक बराबर हूँ, इसलिए उनको हो गया मान। इसलिए गोपियों के मान को और दूसरे गोपियों का आदि सौभग मत था, मत माने होता है मतवाला जो हो जाता है, दूसरों का ध्यान नहीं रखता, इसलिए और गोपियों को मत हो गया, उसको उतारना है। कैसे उतरेगा, यदि सबके सामने यह सिद्ध हो जाए कि कृष्ण सबको छोड़ करके कृष्ण राधा जी को प्यार करते हैं, तो उनका मान उतर जाएगा और उनका अभिमान भी चूर हो जाएगा, तो मत नहीं उनसे अधिक राधा जी को प्यार करते हैं। इसलिए राधा जी का अकेले में मान को प्रसन्न करने के लिए और गोपियों का मत चूर्ण करने के लिए वहाँ से रास्ते अंतर जाएंगे, अकेले नहीं गए। भागवत में ऐसा स्पष्ट नहीं लिखा पहले, किंतु पीछे मालूम होता है कि कृष्ण अकेले नहीं, राधा जी अकेले नहीं, राधा और कृष्ण दोनों रास्ते निकल आए, इसलिए दोनों के पैर मिले गोपियों को। पहले तो कृष्ण का पैर देखा, पैर का चाप, और फिर देखा क्या, उनके साथ में किसी बड़ी सुंदरी गोपी का, किशोरी गोपी का चरण, फिर देखा गोपी के चरण चिन्ह नहीं है, केवल कृष्ण ही के ही चरण चिन्ह है। इसका मतलब क्या हुआ, कृष्ण ने उनको उठा लिया है और कृष्ण के पैर दब गए हैं और इनके पैर नहीं दिखाई। फिर देखा फूल गिरे हुए हैं और यहाँ पर जरूर श्रृंगार किया। इस तरह से कृष्ण ने राधा जी का मान प्रसाधन किया, उसको प्रसन्न माने प्रसन्न किया और उन लोगों का मत देखा जिसे इस गोपी को लेकर के गए हैं, किसी ने सबसे आराधना की है भगवान की, इसलिए श्याम सुंदर उनके साथ में था। इसलिए उनका भी मत जब पूर्ण हो गया तो फिर अंत में लिए हैं, इसका वर्णन हम लोग पीछे करेंगे। अभी कीर्तन और फिर और जो करना है इनका कार्य कर गौर प्रमाण
Thank you.
सर्वभूतहृदयं मुनिमान तोस्मि तवैवास्मि न जीवानुशया विना इति विज्ञाय राधे तं माम शरणं पिबे। चले जाने के बाद में कृष्ण ने उद्धव जी को सीता माता और गोपियों को सांत्वना देने के लिए भेजा। अभी बतलाया है ब्रह्मचारी जी ने, उद्धव जी आए ब्रज में, ने अपने माता पिता और गोपियों को सांत्वना देने के लिए उद्धव जी को नहीं भेजा। लोग समझते हैं कुछ उल्टा। भागवत में सब कुछ परोक्ष बाद में बतलाया गया है। कृष्ण ने कहा रात हो गई गोपियों, तुम घर में चली जाओ। गोपियों ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा, उन्होंने कहा कि मैंने कब कहा, अरे पूर्णिमा के रात में कभी अंधकार होता है, तो मैंने कब कहा कि अंधकार। उन्होंने कहा कि पतियों की, मैंने कृष्ण ने कहा कि पतियों की सेवा करो। गोपियों ने कहा जैसे आपने तो कहा कि पतियों का सेवा करने के लिए, जब कहीं कब कहा, मैंने कहा जैसे मैं पतियों का पति मैं हूं, मैं ये कहा जैसे और पतियों की सेवा करो। भागवत में ऐसा लिखा गया है, अभी उस दिन श्लोक कल का बता रहे थे, तब कथा अमृतम तब जीवन, आपकी कथाएं अमृत को तब से जीवन की शांत प्रशांत, जिसके जीवन में अशांति भरी पड़ी है वो जीवन भी शांति में होगा। गोपियों ने कहा कि हमने कब कहा, हमने तो ऐसा नहीं कहा, हमने कहा कि तुम्हारी कथा ही मृत है, बीच है, जो जीवन में सुखी रहता है अपने घर बार को लेकर के, और जब भी तुम्हारा नाम करता है तुम्हारी कथा सुनता है तो उसका जीवन उत्तप्त हो जाता है। यदि आप नहीं मिलते हैं तभी रोते हैं, और यदि मिलते हैं तो भी रोते हैं, जब मिलते हैं तो और रोते हैं भी रहे। इसलिए कृष्ण का नाम नहीं करना चाहिए, खूब सावधान रहो, वृंदावन में मत जाना, वृंदावन में जाना तो यमुना के किनारे में मत जाना, और यदि यमुना के किनारे जाना भी तो केसी घाट पर मत जाना, और भाग्य से यदि किसी प्रकार से यदि चली भी गई या चले भी गए तो गोविंद मंदिर में मत प्रवेश करना। वहाँ त्रिभंग लज्जित रूप में श्याम सुंदर जी खड़े हैं, एक बार देख लिया तो तुम संसार को भूल जाओगे, और फिर संसार में मन नहीं लगेगा, कोई उलट करके भी नहीं संसार में देखेगा। इसलिए सुख शांति चाहते हो तो बस ठीक रहो, ये पोथी वालों के साथ में भागवत की कथा मत सुनो, नहीं तो चित्त तरम जाएगा कृष्ण में और संसार होगा। ऐसे भी रोना वैसे भी रहना, वृंदावन में लाखों लाखों ब्रह्मचारी लोग देख रहे हैं ना, ये सब घर को छोड़े हुए घर नहीं जाते, मैया घर में रोती है, पिता घर में रोता है, ये वृंदावन में रोते हैं कि कृष्ण कब मिले, और मिल गए तो और भी। गोपियों को तो कृष्ण मिले हैं, मथुरा में कृष्ण चले गए और गोपियाँ रो रही हैं, मैया रो रही है, बाप रो रहा है, सभी रो रहे हैं, नंद बाबा सभी रो रहे हैं। तो ऊपर से देखने में ऐसा मालूम होता है कि कृष्ण ने उद्धव को, नंद बाबा यशोदा जी को, और सबसे अधिक गोपियों को सांत्वना देने के लिए भेजा, किंतु यह बात गलत है। कृष्ण को मथुरा में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता जो कृष्ण से प्रेम की दो चार चर्चाएं बातें कर लें, कोई प्रेमी व्यक्ति रसिक व्यक्ति है ही नहीं है, और यह रसिकता वृंदावन के स्कूल कॉलेज में है। राधा जी नाम का एक विद्यालय है, उसमें ललिता विचार शाखा इत्यादि अध्यक्ष हैं, प्रिंसिपल्स हैं, एक एक सब्जेक्ट के प्रेम के वो सब्जेक्ट के अध्यक्ष हैं। कृष्ण ने कहा कि हम वृंदावन में राधा जी के स्कूल में विद्यालय में हमने प्रेम की शिक्षा पाई, उन्होंने मुझे शिक्षा दिया प्रेम की, मान करना सिखलाया, प्रेम करना सिखलाया। यदि उद्धव को इस कॉलेज में भर्ती कर दूं और उद्धव वहाँ जो यदि दो चार प्रेम की बातें यदि स्कूल समझ करके पढ़ करके आए तो उससे प्रेम की बातें करूँ, नहीं तो किससे कर, कोई अधिकारी व्यक्ति नहीं जिससे प्रेम की बातें करूँ। गोपी प्रेम तो बहुत ऊँची चीज है, संसार का ये गोपियाँ संसार की नहीं है, कृष्ण भी संसार के नहीं है, अप्राकृत हैं। पहले तो गीता पढ़ो, गीता में ये समझो, प्लेटफॉर्म बने, तत्व ज्ञान हो, और जहाँ पर गीता समाप्त होगी इसके बाद में कृष्ण का भागवत में दासरस शांत रस आएगा, दासरस आएगा, बात्सल्य रस आएगा, तब फिर गोपियों का यह प्रेम आएगा। इसलिए उद्धव जी इतना तो पढ़ चुके हैं, शांत रस पढ़ चुके हैं, दासरस पढ़ चुके हैं, सखरस में अभी पढ़ रहे हैं। तो कृष्ण सखरस तक ही बतलाएंगे, ऊपर तो बतलाए नहीं, कहते हमारे बतलाने से नहीं होगा जी, हम प्रिंसिपल से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से हमने सीखा था, सीएससी करके आए उद्धव, इसलिए वहाँ पर भेज दिया। उद्धव जी गए, जब गए तो कृष्ण ने उनको अपना मुकुट दे दिया था सोने का और अपने सारे कपड़े दे दिए थे, अपने गले का हार भी दे दिया था, अपनी पगड़ी दे दी थी। उद्धव जी भी कृष्ण के उम्र के ही थे, दोनों एक उम्र के थे, सखा थे। जब वहां पर गए तो सोने के रथ में जिसको पहले अक्रूर ले गया था उसमें चढ़ करके गए थे। वहां पर शाम को रथ को खड़ा कर दिया, नंद बाबा जी से मिले और नंद बाबा जी के संबंध में बतलाया होगा ब्रह्मचारी। नंद बाबा के बात्सल्य रस को देख करके आश्चर्यचकित रह गए उद्धव जी। उद्धव जी ने कहा, अरे तुम्हारा बेटा जानते हो कौन है जिसको तुम अपना बेटा कहता है, तुम्हारा बेटा नहीं है ये, तो सड़ैश्वर्यशाली ये भगवान है, तुम इसको बेटा कहता है, तुम्हारा सौभाग्य है और उसके लिए तुम इतना रोते हो, वो तो जगत का बेटा है, जगत का प्रभु है, सर्व कारण कारण है, सब अवतारों का अंश ही है और उसको तुम बेटा कह सकते हो, तुम बड़े सौभाग्यवान, यशोदा बड़ी सौभाग्य है। नंद बाबा रोते हुए खुश हो गया, बोले बेटा मैं तुमको समझता था कि तुम कुछ बुद्धिमान हो गया है, कृष्ण के साथ में रह करके कुछ तुमको अकल आ गई होगी, किंतु तुमको अकल छू तक नहीं, तुमको बुद्धि कनी तो आई नहीं, किसको दुखी कहते हैं किसको सुखी कहते हैं तुमको समझ में नहीं आता है, हमको तुम कहता है कि बड़ा भारी सौभाग्यवान आप हैं, यदि जगत में कोई दुर्भागा व्यक्ति है तो मैं हूँ, तो क्यों, इसलिए कि तुम कहते हो कि जो तुम्हारा बेटा नहीं वो भगवान है, तो वो भगवान भी हमारा बेटा के रूप में आया और मैं उसको लालन पालन नहीं कर सका, उसको प्रसन्न नहीं कर सका, वो मथुरा में चला गया हमें छोड़ कर, किसी को एक पत्थर छोटा सा चमकीला सफेद मिला, देखा जी बड़ा सुंदर है, उसने अपने टेबल के ऊपर में रख दिया और काम किसी काम में चला गया, जब आकर के देखा कि वो नहीं है, कहीं पत्थर कहाँ गया, किसी ने कहा अरे भाई वो पत्थर नहीं था, वो तो ऐसा एक था पदार्थ जो कि लोहे को स्पर्श कर दो तो सोना बन जाता है, वो पारस बड़ी है स्पर्श बन गया। अब तो वो रोने लगा जा रही स्पर्शमणि, मुझे तो मालूम नहीं था, मैंने तो सोचा था कि वो एक कांच का टुकड़ा है, ऐसे ही तुमने कहा, मैं तो अपना बेटा समझ करके उसको रो रहा था, तुमने कह दिया कि भगवान, और भगवान हमें छोड़ करके चले गए, मथुरा में अभी तक जीवित हूँ, ये तो प्रेम नहीं। मैं तो बार दुर्भागा हूँ, पिता तो एकमात्र महाराज दशरथ थे, जो बेटे के चले जाने पर जंगल में चला गया तो उन्होंने कहा हाराम हाराम, और तीसरी बार नहीं इतना प्राण निकल गया, और अभी तक मेरे प्राण नहीं, ये कह करके रोने लगे। रात भर बात की, यशोदा मैया रात भर रोती रही। अब सवेरा हुआ, वो क्यों स्नान करने के लिए पास ही में कृष्ण कुंड रह गए, और स्नान करके डुबकी लगाई, अन्न ही किया, और इतने में देखा सुंदर वन एक को, वो वन कौन सा, उद्भव क्यारी जिसको कहते हैं, यदि कोई वृंदावन नंद गांव जाए तो देखे, क्यारी किस लिए कहते हैं, कदम्ब की क्यारी लगी हुई है, लाखों पेड़ हमने भी देखा आज से 60 वर्ष पहले, हजारों पेड़ कदम्ब के फूल लगे हुए, बड़ी सुंदर सुगंध मीठी सुगंध आती थी, इसलिए उसका नाम कदम्ब क्यारी या उद्धव क्यारी पीछे से हुआ। तो कदम्ब क्यारी ने की तरफ में देखा, अरे बहुत ही सुंदरी गोपियां यहाँ पर दिख पड़ती हैं, जो गोपियां कृष्ण के मथुरा आने पर घर नहीं गई उसी जगह रह गई, और योग माया ने उनका रूप बना करके दूसरी गोपियों को उनके घर में भेज दिया, किसी को यह रहस्य मालूम नहीं। उस दिन से गोपियों ने खाना नहीं खाया, भोजन नहीं किया, वस्त्र नहीं बदले, अपनी चोली को नहीं उन्होंने बदला, क्यों, कृष्ण के संबंधित आंसू आ रहे हैं, और बड़ी सी धूलियों से मिल करके कीचड़ जैसे हो गए, गंदी हो गई है, तो भी कृष्ण संबंधित आंसू और ये धूलिय इसलिए अपने अंकों में लगाई है। उद्धव जी ने देखा, एक गोपी कह रही है भाई ये किसका सुंदर रथ आया सोने का, किसने कहा जी ये मथुरा से रथ आया, भाई क्यों आया, कौन लेकर के आया, अक्रूर वही तो नहीं आया जो हमारे श्याम सुंदर को प्राण को लेकर के गया, अभी किस लिए आया। एक दूसरी कति ने कहा इसलिए आया कि कंस मारा गया, अब उसका श्राद्ध करना है, 13वीं है कि 12वीं है, उस दिन पिंड देना है, और पिंड कहाँ से आए, कृष्ण के विरह में सब ब्रजवासी मर चुके होंगे या मरने वाले होंगे, उनके हृदय को पिंड निकाल करके ले आओ और कंस की श्राद्ध दिया जाए, इसलिए शायद आया है, नहीं तो और क्या काम हो सकता है। ये बात तो ठीक आती है, किंतु ये सोने के रथ में किस लिए चढ़ करके आया, ओ ये बात है मैं जानती हूँ, तीसरी ने कहा इसलिए आया सोने के रथ में, कृष्ण तो अपने आया नहीं, अपने किसी सेवक को भेजा, तो इसलिए भेजा है कि जिसका नौकर सोने के रथ में चलता है वो आज कृष्ण गायों का चराने वाला बंसी बजाने वाला बांस की नहीं है, अब ये कौन हो गया, मथुरा का राजा बन गया है, और महारानी कुब्जा उसकी हो गई है, और कितनी लड़कियों से वो शादी करेगा, बिना स्त्री का तो वह रह नहीं सकता, इसलिए ये अपनी माता और पिता को यह जुलूस दिखलाने के लिए आया है कि देखो हमारा नौकर सोने का मुकुट पहनता है, सोने के रथ में चलता है, और कैसी पगड़ी बनता है सोने की, इसीलिए सब लड़कियों से। उद्धव जी ने कहा यह है पृथ्वी की फट जाती उसमें समा जाता है, मैं रथ में चढ़ करके क्यों आया, पृथ्वी के ये कपड़ों को पहन करके क्यों आया, ये तो मैंने ठीक किया नहीं, इससे तो उनकी सांत्वना पड़ेगी नहीं, उनकी क्रोधाग्नि बढ़ेगी। एक ने कहा जैसे जानती है ये कौन है, हाँ जानती हूँ ये कौन है, कौन है श्याम है ना, श्याम है किंतु श्याम नहीं है, क्यों श्याम, श्याम माने रंग का तो श्याम है एक ही जैसा, देखें गोपियां यदि तमाल वृक्ष को देखती हैं तो झट दौड़ करके आलिंगन करती हैं प्रियतम समझकर, और उद्धव कृष्ण के समान देखने में परम सुंदर, कृष्ण का कपड़ा पहने हैं, कृष्ण का हार पहने हैं, किंतु गोपियों को देखो प्रेम की मर्यादा, प्रेम कैसे रखता है, दौड़ करके उनको आलिंगन नहीं किया, तमाल वृक्ष को करने ही उनको नहीं किया, क्यों, प्रेम उनकी मर्यादा की रक्षा करता है, श्याम तो नहीं किंतु श्याम है, किंतु श्याम नहीं, वो श्याम है। तो तू कैसे समझी? तो मैंने इसलिए समझा, हमारी आंखें भूल कर सकती हैं किंतु नाक भूल नहीं करेगी। कैसे? नाक सूखी है ना, इसके कपड़े से ऐसी सुगंध आ रही है ये मालूम होती है कि कृष्ण का सुगंध अंगों का गंध है। ये दूसरे के कपड़े में नहीं हो सकता है, इसलिए कृष्ण का कपड़ा ये पहन करके आया है, इसलिए कृष्ण का अंतर मालूम होता है, इसलिए आया है। जरूरत क्या थी? एक कहती है गोपी अपनी मैया को और पिता को सांत्वना देने के लिए भेजा, तो उसको यहाँ क्या जरूरत है हम लोगों की? अरे हमारा कृष्ण के साथ में क्या संबंध है? मानो तो संबंध है, नहीं तो कोई संबंध ही नहीं है। एक गोपी ने कहा, उद्धव जी को बुलाया, तुम्हारा नाम उद्धव है ना? ठीक। तो कहते कैसी ये जान गई, कभी देखा नहीं सुना नहीं। हम पहचानते हैं, हम लक्षण से समझिए कि आप उनके कथा हैं, आप उनके अंतर। अच्छा उद्धव ये बतला, प्रेम दो प्रकार का होता है, एक कपटी प्रेम होता है दिखावटी, और एक होता है असली। एक औपाधिक प्रेम होता है, एक सुपाधिक प्रेम होता है। औपाधिक बने नकद ऊपर देख लाने के लिए, उद्धव जी देख रहे हैं। देखो जो औपाधिक प्रेम होता है उसमें स्वार्थ होता है, और जो शुद्ध प्रेम होता है उसमें कोई भी स्वार्थ नहीं है। तो हमारा तो कृष्ण के प्रति कोई स्वार्थ था नहीं, निस्वार्थ प्रेम था, और बचपन से ही प्रेम था, अब भी है। और कृष्ण का भी ऐसे ही मालूम होता था कि उसका भी प्रेम शुद्ध है, कोई स्वार्थ है, काम का गंध नहीं, कोई वासना की धूम नहीं। वो तो बतला सकता है कि वो प्रेम कैसे टूट गया, वो चला गया मथुरा हमें छोड़ करके, हमारा प्रेम कैसे टूट गया बतला, जब तक निस्वार्थ प्रेम था तो निस्वार्थ प्रेम नहीं टूटता। तो उद्धव जी देखते रहे, यहीं से उनका पाठ प्रेम का आरंभ हुआ। ये प्रेम किसको कहते हैं? उद्धव जी नहीं समझ रह पा रहे हैं ये प्रेम विशुद्ध गोपियों का प्रेम किस कोटि का, किस उसकी किसी कोटि का है। प्रेम हो तो गोपियों के पास में जाना पड़ेगा, उनसे सीखना पड़ेगा, तब शुद्ध प्रेम के संबंध में हम जाते। उद्धव जी नतमस्तक हो गए, चुपचाप सुनने लगे। मैं क्यों आया? मेरी तो योग्यता भी नहीं है इस कॉलेज में भर्ती होने की, प्रेम की कॉलेज, किंतु कृष्ण ने भेजा, इसीलिए भेजा हमको पाठ पढ़ने के लिए, सांत्वना देने के लिए नहीं, वो तो बहाना था। गोपी कहती है जो प्रेम होता है स्वार्थ प्रेम, वो तेरे जैसे ही लोगों का, तेरे प्रभु जैसा रंग, तुम्हारा प्रभु का रंग कैसा है? तो सबसे कीड़ों में सबसे काला कौन सा कीड़ा है? भौरा काला, उनसे ही जैसा। ये दोनों ही भीतर बाहर दोनों काले हैं, एक तरफ नहीं। इसलिए चोर का चोर मित्र होता है, बदमाशों का बदमाश होता है, राजनीतिकों का राजनीतिक, धूर्तों का धूर्त, पियक्कड़ों का पियक्कड़ होता है, जरूर दोनों में मित्रता है। इसलिए इसका ये अनुचर भी और वो भौरा भी, भौरा फूलों से प्रेम करता है, एक फूल पर बैठा और जब उसका रसपान कर लिया, मधुपान कर लिया, तो उसको छोड़ करके फूल उड़ करके दूसरे पर बैठ गया। तेरा प्रभु भी ऐसा ही है, ये प्रेम कैसा है? स्वार्थ, इसमें निस्वार्थता नहीं। एक भीख मंगा भिखारी किसी के घर में गया और भिक्षा मांगा, भिक्षा मिली, बस यदि गृहिणी या घर वाले भिक्षा देने वाले कहे थोड़ा सा उठा जाओ बाबा, कहे नहीं हमको बहुत सा काम है, बहुत देर हो गया, नहीं चाहिए। लड़कियां और लड़के स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, जबकि परीक्षा पास हो गए, स्कूल पूरा हो गया वो, या कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई, तो फिर उसमें अपने मास्टर के पास में फिर जाएगा लौट कर, पढ़ाई पूरी हो गई अब जरूरत नहीं। एक आदमी एक किसी से बेचार से प्रेम करता है, काम हो गया पूरा, उसे कोई मतलब नहीं, पेशाएं पैसा एंठ लेंगी, इसके बाद में कोई प्रेम नहीं। इसी तरह से जंगल में हिरण रहते हैं, हिरण में जंगल में आग लगे फिर हिरण वहां नहीं जाएगा। चिड़िया हरे भरे पेड़ में रहती है, यदि वो सूख गया तो उसमें चिड़िया उठ करके दूसरी जगह चली जाएगी। क्यों? छाया नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेगा। तो हमारा प्रेम तो ऐसा नहीं था, तो बतलाओ तो क्यों किया? उद्धव जी उत्तर नहीं देते। एक गोपी उनको ले गई भीतर में, जहां पर कि गोपियों के बीच में गभीर वन में, वहां पर एक सोने की पुतली सी पतली काया सो रही है।